ઓમ શાંતિ. પરમાત્મ શક્તિ દ્વારા વ્યાપાર મેં મહાપરિવર્તન ઇસ થીમ કા જો પહેલા સત્ર હૈ ઉસમેં આપ સબકા બહોત બહોત સ્વાગત હૈ. હમારે બીચ આદરણીય ગીતા દીદી ઉપસ્થિત હૈ. હમ સભીને કલ ઉનકા પરિચય સુના. અબ કોર્તલ ધ્વનિ સે હમ દીદી કા સ્વાગત કરેંગે. मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय गीता दीदी को कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य और परिचय हमें दे. आदरणीय गीता दीदी. ओम शांति.
ओम शांति. बहुत सुंदर विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हम सभी बैठे हैं और सभी सौभाग्यशाली भी हैं जो इतने सुंदर वक्ताओं का आपको लाभ मिला है. शिवानी बहन जी के भी दो सेशन हुए और हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी से भी बहुत सुंदर बातें हम सब ने सुनी. परमात्मा शक्ति द्वारा व्यापार में महापरिवर्तन. परिवर्तन तो सदा होता ही रहता है. परिवर्तन संसार का नियम है. हर क्षण परिवर्तन होता है. इसलिए कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट. कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता ही रहता है. तो आज मॉर्निंग के और अभी जो इवनिंग में भी सेशन हुआ, इससे काफी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि परिवर्तन का मतलब क्या है. व्यापार में परिवर्तन माना ऐसा नहीं है कि कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो वो चेंज कर दे, किराने का बिजनेस कर ले या ज्वेलरी का कर ले. ऐसे तो कई बिजनेस आपने चेंज किए होंगे. सिर्फ उनके साधनों में परिवर्तन नहीं है ना. कई बार हम दुकान अच्छी बना लेते हैं, उसका एलिवेशन ठीक कर लेते हैं, वो शोरूम हम सुंदर बना लेते हैं, स्टाफ चेंज कर लेते हैं, सिस्टम चेंज कर लेते हैं और इससे थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है, पर स्थायी और इफेक्टिव चेंज लाना है तो आज जो बात हुई महापरिवर्तन का मतलब ही है कि मूल परिवर्तन, फंडामेंटल चेंज. और वो हमें कैसे करना है. गीत भी आपने बहुत सुंदर सुना कि संसार बदलता है हम आत्माओं के बदलने से. संसार जो है वो प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है. प्रकृति माना पांच तत्व और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा. हम आत्माओं की स्थिति बदलने से संसार का स्वरूप बदलता है, युग बदलते हैं और समस्त जगत में चैतन्य शक्ति आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम मनुष्य आत्माएं कहते हैं ना, समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी मनुष्य आत्मा है। बाकी जो पशु पंछी और प्रकृति जगत है वो तो हमें फॉलो होते हैं। इसलिए जब विश्व को बदलना है तो परमात्मा व्यक्ति को बदलते हैं। इस एकेडमी के मेन गेट पर ही आपने पढ़ा होगा कि एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, हम सब बेहतर संसार चाहते हैं। हरेक के मन में बहुत सुंदर विचार है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हम कैसा संसार चाहते हैं तो सबके तरफ से बहुत सुंदर विचार मिले। एक ऐसा संसार जो सुखमय हो, श्रेष्ठ हो, जहां सुसंस्कारिता हो, सभ्यता हो, जहां सम्मान हो, समानता हो, साक्षरता हो, स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो, न्याय हो, नीति हो, है ना, कितने विचार आ सकते हैं। पर ऐसा बेहतर संसार कौन बनाएगा? क्या धर्म नेताएं बना देंगे? क्या राजनेता बना देंगे? क्या वैज्ञानिक बना देंगे? नहीं, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बने। क्योंकि आज अगर संसार दुखमय बन गया है या विकृत हो गया है वो कोई एक के कारण नहीं, कोई एक वर्ग के कारण नहीं, हरेक के द्वारा जाने अनजाने कोई ना कोई नेगेटिविटी एक्टिव हुई है तभी संसार नेगेटिव बना है। इसलिए अगर हमें इनको बेहतर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो इसमें भी सबकी अच्छाइयों का सहयोग चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए अगर हम अपनी अच्छाइयों को विकसित करें और मानव कल्याण के लिए उपयोग करें तो क्यों नहीं हम अच्छा संसार बना सकते, अवश्य ही बना सकते। इसलिए कल भी मैंने बताया था कि 18 प्रोफेशन के लिए यहां प्रोग्राम चलते हैं और हर प्रोफेशन की परफेक्शन के लिए, परिपूर्णता के लिए स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन क्या रोल प्ले करती है ये उसमें सिखाया जाता है। हम कह सकते हैं कि हर प्रोफेशन आध्यात्मिकता के बिगर अधूरा है, क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्ति के आंतरिक को बदलते, उसके अंतर जगत में परिवर्तन लाते, उनके गुण और शक्तियों का विकास करते, और तब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा वो अपना अच्छा ही प्रदान करेगा। आज यहां व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े आप सभी भाई बहने एकत्रित हुए हैं और आप जानते हैं कि व्यापार और उद्योग का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जो देश में समृद्धि को खींच करके लाता है। और जो देश जितना आर्थिक रूप से समृद्ध होता है वो उतना ही विज्ञान, चाहे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र में वो अच्छा विकास कर सकता है। इसलिए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र को देश का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी उससे माना जाता है, क्योंकि इसके आधार पर समृद्धि देश में आती है। कुदरत ने हमें 5 तत्व दिए हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, पर इन 5 तत्व से आज लाखों करोड़ों चीजें बनाकर कौन देता है? उद्योग क्षेत्र देता है। एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन उद्योग हमें बना करके देते हैं। हम कह सकते हैं कि इन आंखों से इस दुनिया में जो भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ, जो कुछ हम देखते हैं वो कौन बना कर देता है? उद्योग क्षेत्र बना कर देता है। प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक कभी आप लिस्ट बनाइए कितनी चीजों का हम उपयोग करते हा? कभी आप लिखिए सुबह से लेकर रात तक कितनी चीजें, वस्तु, साधनों का हम उपयोग करते हा? एक ब्रश, टूथपेस्ट, बाल्टी, साबुन से लेकर आप लिस्ट बनाए, ये सारे साधन हमें कौन बना कर देते हैं? आप उद्योग क्षेत्र के भाई बहने बना कर देते हैं। और जैसे आज सुबह बताया आपको कि आज हमें अपने गांव या शहर में दुनिया भर की चीजें लाकर कौन देता है? व्यापार क्षेत्र के भाई बहन। आपको अपने शहर में बैठे कश्मीर के एप्पल चाहिए, आसाम की चाय चाहिए, नागपुर के संतरे चाहिए, सूरत की साड़ियां चाहिए, चेन्नई की कॉफी चाहिए, गोवा के काजू चाहिए, तो कौन लाके देता है? आप सब व्यापारी भाई बहन। दैनिक जरूरियात की चीजें, सुख और सुविधा के साधन इसी व्यापार के कारण हमें उपलब्ध होते। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, ये बहुत बड़ी आय का साधन है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंडरस्टूड है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाई बहने भी विशेष है, सामान्य नहीं है, बहुत योग्यताएं हैं आप में। नौकरी करना सहज है, पर व्यापार करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, परखने की योग्यता चाहिए, समय को, व्यक्ति को परखना, पहले से भांप लेना, समय पर उचित निर्णय करना, लोगों से मिलनसार व्यवहार करना, ये बहुत सारी विशेषताएं आप सब में। लेकिन जब से हमारी देश की सरकार ने व्यापार और उद्योग क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन अपनाया है, लिबरलाइजेशन उदारीकरण की नीति अपनाई है, प्राइवेटाइजेशन जब से हो रहा है, व्यापार और उद्योग क्षेत्र के सामने काफी चैलेंजेस आए। जब दुनिया भर की चीजें हमारे मार्केट में आने लगेगी तो हमारी प्रोडक्ट में ऐसी यूनिकनेस चाहिए और हमारा आर्ट ऑफ बिजनेस इतना स्पेशल चाहिए तो हम मार्केट में अपना स्टैंडिंग बना सकते हैं। इसलिए यह वर्ग कुछ तनाव से ग्रसित होता हुआ नजर होता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र और उससे जुड़े हुए आप सभी विशेष भाई बहने कैसे तनाव से मुक्त हूं, व्यापार भी बढ़े, सफलता भी मिले और तनाव भी कम हो, विद्यालय ने इस बात पर सोचा। विद्यालय में बताया ना 9 लाख से अधिक भाई बहने हैं तो उसमें हजारों व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहने भी, उन सब के अनुभवों से फिर ये कार्यक्रम बनाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव बताए कि जब से वे इस विश्वविद्यालय में आए हैं, ज्ञान और योग का अध्ययन करते हैं, व्यापार में आने वाली हलचल ऊपर नीचाई में वे कैसे शांति से, धीरज से और अपनी एकरस मन स्थिति से वो कैसे उनको पार करते, तो उनके अनुभवों को लेकर व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए इस विंग का निर्माण किया गया। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम था, उस समय हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो हम हर वर्ग की कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हैदराबाद में जब ये प्रोग्राम था, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स नाम आपने सुना होगा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केवी के राजू थे, वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। फुल ऑडियंस था, कार्यक्रम सुंदर चल रहा था, अचानक लाइट चली गई, फिर भी शांति से प्रोग्राम चलता रहा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई सीटियां नहीं बजी, कोई हलचल नहीं। उनको ये बात बहुत प्रभावित कर गई। उन्होंने कहा मुझे आपका हेडक्वार्टर विजिट करना है। वो यहां आए और उन्होंने, उस समय तो ये कैंपस भी नहीं था, वही छोटा पांडव भवन कैंपस, उन्होंने काफी डिपार्टमेंट को विजिट किया। जैसे आपको शिवानी बहन ने बताया था कि जाना सब डिपार्टमेंट को देखना, उन्होंने उस समय वहां जितने डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने विजिट किया। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि यहां तो कोई हाईली एजुकेटेड भी नहीं है उस डिपार्टमेंट के लिए, और कोई सैलरी भी नहीं ले रहा है, फिर भी इसका कार्य इतना व्यवस्थित कैसे चल रहा है। जब वो दादी जी से मिले, उस समय दादी प्रकाशमणि जी थे, तो दादी जी को उन्होंने कहा कि दादी मैं तो अपनी कंपनी में बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों को अपॉइंट करता हूं, बहुत हाई सैलरी देता हूं, और ट्रेनिंग्स के द्वारा लेटेस्ट सारी जो एडवांसमेंट है वो नॉलेज भी देकर उसको अपडेट भी करते हैं, फिर भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए हमें नहीं मिलती, और यहां मैं देख रहा हूं कि यहां तो वो चीज भी नहीं है, फिर भी ये कैसे चल रहा है। तो दादी जी ने बिल्कुल सिंपल एक ही शब्द में बताया कि स्पिरिचुअलिटी ही इसकी सफलता का राज है। यहां जो नियमित रूप से ज्ञान योग का अध्ययन हम करते हैं, इससे हरेक में इतनी अवेयरनेस आती है कि वो अपना कार्य बहुत दिल से करते। तो उन्होंने कहा कि हम इतना हाईली एजुकेटेड लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर भी उनके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेवारी से लोग काम नहीं करते हैं, मोटिवेशन नहीं है, जो उमंग उत्साह और अपनापन होना चाहिए वो नहीं है। जैपनीज के लिए कहा जाता है कि वे सिर्फ अपनी कंपनी में, उद्योग में, दुकान में काम नहीं करते हैं, बट दे आर मैरिड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, वे अपना पूरा जीवन उससे जोड़ देते। यहां लोगों में मोटिवेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो ये चीज कैसे आए। तो दादी जी ने कहा कि ये जो हमारे वैल्यूज हैं, वो हमें अपने आप में से ही विकसित करने, और उसी की ये मेथड है मेडिटेशन। हमारे अंदर जो आंतरिक योग्यता और शक्तियां हैं उसको बाहर लाना, विकसित करना। तो उन्होंने विद्यालय को इनवाइट किया, फर्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने बनाकर दिया और दादी जी को कहा कि दादी आप अपनी दो बहनों को भेजिए और मेरी कंपनी में उनकी जहां नागार्जुना हिल पर जहां उनकी कॉरपोरेट ऑफिस है वहां पूरा ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने बना के दिया और बोला आप यहां इसके प्रोग्राम्स चलाइए। तो भारत की स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न मैनेजमेंट साइंस को ब्लेंड करके विद्यालय ने काफी प्रोग्राम्स डेवलप किए। इंडस्ट्री के लिए सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया, व्यापारियों के लिए सेल्फ ओरिएंटेशन वर्कशॉप प्रोग्राम डेवलप किया हम लोगों ने, एचआरडी के लिए पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम डेवलप किया और एम्प्लॉयज के लिए सेल्फ मैनेजिंग क्वालिटीज SMQ ये प्रोग्राम डेवलप किया और सैकड़ों इंडस्ट्री में और बिजनेस ग्रुप में इसको किया गया और बहुत सफलता मिली। तो जब से ज्ञान सरोवर एकेडमी का निर्माण हुआ 1995 में प्रतिवर्ष यहां हर प्रोफेशन के लिए प्रोग्राम होते हैं। तो आप सभी विद्यालय के उद्देश्य को समझ सकेंगे कि आध्यात्मिकता हमें जीवन की सही अंडरस्टैंडिंग देती है और मेडिटेशन प्रैक्टिस हमारे विल पावर को डेवलप करती है। वैल्यूज आर कनेक्टेड विथ पीपल, मशीन से नहीं, चैतन्य से मूल्य जुड़े हुए। इसलिए ये बात बताई गई कि हम मशीन्स नए ले आए, टेक्नोलॉजी कल जो एडवांसमेंट हुआ उसके आधार पर जो रिफाइन क्वालिटी मशीन्स बने वो हम ले आए, सिस्टम्स रिफाइन किए, मटेरियल क्वालिटी ले आए, पर आज हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को समझ में आ गया है कि सबसे वैल्यूएबल एसेट हमारी कंपनी में, दुकान में जो लोग काम करते हैं वो वैल्यूएबल है। हमने चीजें अच्छी बना दी, साधन अच्छे बना दिए, सिस्टम्स रिफाइन कर दिए, पर अगर व्यक्ति ही ठीक नहीं तो नई चीजें साधन लाने के बाद भी सफलता नहीं मिल सकती। कहते ना आफ्टर ऑल हर मशीन के पीछे मानव है। इसलिए जब तक व्यक्ति का आंतरिक विकास हम नहीं करें, परिवर्तन माना, कुछ छोड़ना नहीं। अक्सर जब हम किसी को कहते हैं कि भाई आपको अब हम चेंज करेंगे, अपने क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाएंगे, तो लोग क्या समझते हैं कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। परंतु परिवर्तन का मतलब है कि जीवन में कुछ धारण करना, गुण और शक्तियों को लाना, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते। और आपका भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा, क्या चीजें अच्छी हो रही है, क्वालिटी मिल रही, साधन सुविधाएं बढ़ गए हैं। फिर भी अगर दुख का कारण है, तनाव का कारण है, असंतुष्टता का कारण है, तो वो हम मनुष्य ही मनुष्य के लिए तनाव टेंशन का कारण है। हमारी कमी कमजोरियां, हमारे स्वभाव संस्कार ही एक दो को दुख का कारण बने हुए हैं। इसलिए आवश्यकता है हमें क्वालिटी बनने की, हमें अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाने की। समय बदलता है, साधन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारे आसपास का संसार बदल गया है, व्यक्ति खुद भी भीतर से काफी बदल गया है। हम कहते हैं कि सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो क्या बदल गया, क्या बदल गया? मानव शरीर तो वही दो आंख, दो हाथ, दो पांव, दो कान वाला है, पर कितना बदल गया इंसान। तो इंसान में क्या बदल गया? उसके विचार, आचार, दृष्टिकोण, उनकी भावनाएं, माना वो चैतन्य आत्मा में बदलाव आ गए। अब उसमें कैसे हम आमूल परिवर्तन लाएं? इसी थीम को लेकर इनके चार सेशंस हैं, जिसको आपके प्रोग्राम में थीम सेशन लिखाया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, पर स्वयं को तो हम बदल सकते हैं। वी कांट चेंज सिचुएशंस, बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड्स। हम अपने दृष्टिकोण, अपनी वृत्तियों को तो हम बदल सकते हैं, परिस्थितियां, शब्द ही आप देखिए, परिस्थिति दूसरों के तरफ से आती, आउटसाइड एजेंसी से आती, व्यक्ति प्रकृति से बातें आती है, वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, पर हमारी अपनी आत्म स्थिति, मनोस्थिति तो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी स्थिति। आप अपने घर में नया टीवी ले आते हैं, क्या उसका रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे आते हैं क्या? हाँ, कि भाई आप जो दिखाना चाहो हमें दिखाओ, ऐसे करते हैं हम? हाँ, नहीं, बल्कि घर का हर सभ्य क्या चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ताकि मैं जो देखना चाहूं वो देख सकूं। पर जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है? ईश्वर के हाथ में तो देते ही नहीं, हमने दूसरों के हाथ में दे दिए है ना? कोई कुछ बोलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई महिमा करते हैं हम फूल जाते हैं, कोई गलत करते हैं हम भी करने लगते, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। वो लोगस ऑफ कंट्रोल कैसे अंदर शिफ्ट करें, हमारा अपना अपने आप पर कंट्रोल आ जाए, ताकि कैसी भी बातें हों, परिस्थितियां हों, लेकिन हम अपने आप में स्वस्थ संतुलित रह सके। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप आपस में एक दूसरे से परिचित हो, इसलिए ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया है कि हम अपने आप में ऐसी योग्यता का विकास करें, ताकि हमारे अंदर ऐसी शक्ति हम धारण करें जो हमारा जीवन और व्यापार सहज और सरल बन जाए। व्यापार में सफल तो हम हो जाते हैं काफी मेहनत करके, पर बहुत मेहनत और तनाव महसूस करते हैं, उसके बाद सफलता मिलती है, हम उसका सुख और आनंद भी नहीं ले सकते। कहते हैं एक व्यापारी अपनी आधी जिंदगी स्वास्थ्य का भी ध्यान न रख वेल्थ कमाने में लगाता है, और बाकी की आधी जिंदगी कमाई हुई वेल्थ, गवाई हुई हेल्थ को वापस लाने में दवाइयों में खर्च करता है। ये आज की व्यापारियों की जीवन पद्धति बन गई, लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसमें स्टाइल ज्यादा हम मारते हैं लाइफ तो कुछ रहा ही नहीं। तो अभी आप दो दो का आपस में ग्रुप बनेंगे, दो दो की जोड़ी बनेंगे, जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ आप अपनी पैर बनाइए, और इसमें से कोई एक बात पर पहले एक दो को परिचय दीजिए, शरीर का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, और ये चार बातें आपके सामने रखी है, कोई एक बात को आप लें और आपस में परिचित भी हों और डिस्कस भी करेंगे। आपके जीवन की महान सिद्धि कौन सी है, आपके जीवन की अविस्मरणीय क्षण कौन सी है, हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी है, और कौन सी आप में योग्यता है जिसके कारण आपको गर्व महसूस होता है। मैं समझती हूँ ये चौथी बात लेकर आप एक दो के साथ शेयर करेंगे कि आप में ऐसी कौन सी विशेषता, योग्यता, गुण है जिसके कारण आपको अपने जीवन पर गर्व महसूस होता है, और आपको जीवन में या व्यापार में इसके कारण सफलता मिली है, मदद मिली। तो अब दो दो की जोड़ी बनी, लक्ष्य रखिए, जिसको नहीं जानते उनके साथ परिचय करें। 5 मिनट का समय, हाँ, उठ के बैठ सकते हैं वहां जाके एक दो के पास, वहां जिनको जानते हैं यहां भी उसी के साथ आप रहेंगे तो नया नहीं सीखेंगे ना, इसलिए जिसको नहीं जानते उनके पास जाकर बैठिए, पहले परिचय दीजिए एक दो को। फिर हम बुलाएंगे चार ग्रुप को, इसलिए शेयर करिए। मिनट है इसलिए जल्दी जल्दी सबको करना है। एक दो के अनुभव से भी हम काफी सीख सकते हैं। माइक आगे रखें। अब एक ही मिनट बाकी है। अब हम चार ग्रुप को बुलाना चाहेंगे। इस तरफ से कौन आएगा? एक ग्रुप आएगा, हाथ ऊपर करो। इस तरफ से, यहाँ से दो ग्रुप आएंगे और इधर से एक ग्रुप आएगा। आ जाइए। आपके साथ जिसने शेयर किया हो, यहाँ से कौन आएंगे? बीच के सेक्शन से आपके पार्टनर कौन है? ये भाई आ जाए। एक बहनों का ग्रुप हो गया, भाई आ जाओ। और इधर से ये बीके हैं कि गेस्ट है? गेस्ट हैं आप लोग? गेस्ट है, एक ग्रुप इधर आ जाओ। और ये भाई किसके साथ है? बस एक ग्रुप आएगा। और ये बह आइए माइक पर आइए, ये माइक है वहाँ। आप तीनों ने शेयर किया क्या?
नहीं।
आपने?
वो नीचे बैठे हैं। अंकल के साथ क्यों?
तीन कहाँ हैं आप?
एक ये हैं और एक।
हाँ, अभी इस ग्रुप को दे दो माइक। उस तरफ थोड़ा फेस भी करेंगे।
मेरे साथ
आप ऐसे करेंगे, आप उनका परिचय देंगे और उनका अनुभव सुनाएंगे, और भाई आपका अनुभव और आपका परिचय देंगे।
मेरे साथ खड़े हैं भाई गिरीश निमा जी है, वो इंदौर से हैं और उनका फायर फाइटर्स बनाने का इंडस्ट्री है। तो जो लास्ट पॉइंट है, व्हाट क्वालिटी इन यू मेक्स प्राउड, तो उनका ये कहना है कि जो भी काम वो लेते हैं वो एकदम डेडिकेशन के साथ करते हैं और रात दिन उसी बात को सोचते रहते हैं कि इसको अच्छी तरह कैसे पूरा किया जाए, वही बात उनको प्राउड फील कराती है।
वेरी गुड।
मेरे साथ जो मेरे मित्र खड़े हैं वो श्री जयेश श्री दलाल शेष दलाल हैं और वो अहमदाबाद से हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने जो बात अपने बारे में बताई जिससे वो प्राउड फील करते हैं वो ये है कि वो उनमें पेशेंस बहुत है और दूसरा फेथ है कि जो भी जो हमने पेशेंस रखा है वो फलफिल होगा किसी भी हालत में।
बात थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप आइए।
ओम शांति। मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है और प्रॉपर मेरी फैमिली एमपी की है और मैं महाराष्ट्र का हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, अच्छा
वो इतनी बात ही नहीं, यही बताने में रह गए, मैंने तो बताया ही नहीं।
एक्चुअली हुआ है कि जैसे ही उन्होंने टास्क दिया तो मैं अपने बारे में इनको बता रहा था।
ठीक है, आप अपना बता दीजिए। चलो
आप बता दो।
ठीक है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है एमएससी आईटी बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन मैंने अपनी फील्ड को ना पकड़ते हुए क्या हुआ, जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर योर ग्रेट अचीवमेंट। मेरा ग्रेट अचीवमेंट ये रहा कि मैंने दो डिफरेंट कंट्रीज की डील बिना कोई प्रॉब्लम के हैंडल कर दी थी यहीं इंडिया में बैठे बैठे, और उसके कारण मेरा एक आइडिया वाला बल्ब जला कि क्यों ना मैं अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लॉन्च कर सकूं। तो व्हाट इज योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी, जो ईरान है उसकी लैंग्वेज पर्शियन है और न्यूजीलैंड और कनाडा की लैंग्वेज इंग्लिश है और हमारी हिंदी है। तो मैंने क्या किया, उनकी डील के लिए अपना आईटी नॉलेज यूज किया और ट्रांसलेटर का यूज करते हुए दोनों कंट्री के जो कस्टमर हैं उन दोनों को बातचीत करवा दिया। और जैसा कि मैंने बताया था शिवानी दीदी के समय कि ऑनेस्ट होना बहुत आसान है, ठीक है। तो आसान कैसे है कि जब सामने वाले को बता दो कि ये चीज ये है, इसका दाम ये है, आपको पसंद आता ले लो, और ऐसा ही उनको भी था। अब बात आ रही थी लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर का काम मैंने किया इंडिया में रह के, तो डील पक्की हो गई। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे प्रॉफिट के नाम पे कुछ गिफ्ट टाइप कुछ देंगे, लेकिन जब मिला तो मेरे दोस्तों को मैंने ये बात बताई। पहले तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये हो ही नहीं सकता, पर जब ये हो गया तब उन लोग को आज ये कंडीशन है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया, हालांकि मैं मिनी एंटरप्रेन्योरशिप में हूं, लेकिन अब वो बिलीव कर रहे हैं। जब कभी कोई ऐसा कोई कंसाइनमेंट होता तो वो मेरा दोस्त मेरे नाम बोल देते कि राजीव को देखो, उसको बोल दो वो कर देगा। ठीक है, तो ये थी व्हाट इज योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी। यदि ये नहीं होता तो आज वो कंपनी नहीं हो पाती। तीसरा है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे पेरेंट्स, उनको इस चीज पे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पड़ोसी थे वो बोलते थे आपका लड़का आईटी का है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं बना, नेटवर्किंग में क्यों नहीं गया। तो भाई जैसा आपका टैलेंट है वो ठीक है, पर आपकी एक हॉबी है, टैलेंट में फाइंड करिए। जैसे मेरे को लोगों से मिलना जुलना पसंद है, कल्चर डिफरेंट मुझे पसंद है, तो मैंने इसका चैट के रूप में इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इंटरप्रेटर के रूप में, कि ये लैंग्वेज दूसरी है, ये लैंग्वेज दूसरी है, तो मेरे माध्यम से वो दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आईटी तो इस्तेमाल हो ही रही है ना, तो इस टाइप से यूज करना चाहिए उसको। फिर व्हाट क्वालिटी इन यू मेक्स योर प्राउड। प्राउड से ये हुआ कि जब डील फाइनल हो गई तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड फील था, क्योंकि इससे मैं ऑनेस्ट था, कोई भी चीज फेक नहीं थी। और जब एक अंकल ने कहा यहाँ कि ऑनेस्ट तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि क्यों नहीं है भाई। है ना, बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। ओम शांति।
आप
मैं ओम शांति, मेरा लौकिक नाम योगेश, पंजाब से, मंडी गोविंदगढ़। मुझे तो अपने बारे में बताने का मौका ही मिला राजीव भाई को, मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं मंडी गोविंदगढ़ में ट्रेडिंग का, स्टील का बिजनेस है मेरा, और मेरे परिवार में एक्चुअली कोई भी बिजनेस करता नहीं था, सब नौकरी वाले लोग थे। तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो एक हिम्मत आई अंदर, तो मैंने चालू कर दिया और उसमें सक्सेस भी मिल गई। तो यही
क्वालिटी कौन सी? हिम्मत।
हिम्मत,
वेरी गुड।
हिम्मत की क्वालिटी है बस, जो मैं सोच लेता हूँ वो बस कर देता हूँ।
अच्छी बात, ये बहनों को दे दीजिए माइक। थैंक यू।
ओम शांति। मेरी जो पार्टनर है वो दर्शना पाध्याय है, वो अहमदाबाद गुजरात से हैं, और जो हमारी डिस्कस हुई उससे वो बताई कि वो ट्यूशन लेती हैं 8th, 9th, 10th के बच्चों को, और उनका जो क्वालिटी है जिस पे उनको गर्व होती है, उन्होंने डिस्कस से बताया कि वो प्रॉम्प्टली एक्शन लेती है, कोई भी बात का डिसीजन या कुछ करना है तो क्विक एक्शन लेती है, इस पे उनको प्राउड है। धन्यवाद।
ओम शांति। मेरी जो पार्टनर है उनका नाम संजुक्ता दास है, शी इज फ्रॉम बॉम्बे एंड शी इज वर्किंग फॉर बीआरसी, एंड उनका क्वालिटी विच मेक्स हर प्राउड इज हेल्पिंग अदर्स, बीइंग इन द वेरी वेरी कांट से दैट, आई मीन शी इज वेरी बिजी बट शी इज रेडी टू हेल्प अदर्स एवरी टाइम, दैट क्वालिटी मेक्स हर प्राउड।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई ना कोई गुण, विशेषता, योग्यता हमें सफलता दिलाती है। अब आपके सामने चार सिचुएशन है। एक पहला सिचुएशन आप पढ़िए। एक शाम को आप परिवार सहित बाहर जाने के लिए प्लान किए हैं और अचानक बारिश होती है, आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, आपके परिवार भी, बच्चे, फैमिली मेंबर्स निराश हो जाते हैं, और किसको फिर ब्लेम करेंगे? सारा बेकार हो गया, इतना प्लान, खुशी उमंग उत्साह से तैयारी की थी, अचानक बारिश आई, आपका पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब आप किसको ब्लेम करेंगे? हाँ, होता क्या है उस समय? उस समय हम करते क्या, ये कहाँ से बारिश आ गए, सारा बिगाड़ दिया हमारा, हमने इतना ये किया वो किया, पर वास्तव में हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? नहीं, हमें स्वीकार करना होता है जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको फिर रेन को कैसे हम एंजॉय करें, वही हमें सोचना होता है। दूसरा सिचुएशन है कि आप लास्ट ईयर कोई प्रॉपर्टी खरीद करना चाहते थे, पर आपके फ्रेंड ने आपको ऐसा नहीं करने दिया, और वो प्रॉपर्टी अब बहुत महंगी हो गई, उसका 3 गुना दाम बढ़ गया, क्या आपको पश्चाताप होगा? पश्चाताप करने से हम खुद ही दुखी होंगे और होगा कुछ भी नहीं। और हाँ, उस समय परिस्थिति ऐसी होगी जो उन्होंने मना किया, परिस्थिति तो कभी भी बदलती है, तो उस समय क्या करें? पश्चाताप करें, उसको ब्लेम करें? नहीं। तीसरा है कि आपके पिताजी ने कोई बोगस कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब वो आप कुछ कहते हैं वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और बहुत बड़ी मतलब आपने मनी उसमें इन्वेस्ट किया तो अब आपको चिंता होगी ना। एक ही बार और पिताजी की अपनी प्रॉपर्टी थी वो मालिक है जहां भी यूज किया अब चौथी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है आप अपने बिजनेस में और आपके पार्टनर्स जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं क्या मैं वो उनको बदलना चाहिए ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए हाँ खुद को बदलना चाहिए। देखो आज के सेशन का कितना प्रभाव पहले रूप क्या होता तो देखो एक योग्य विचार नॉलेज मिलने से और योग्य संग मिलने से और एक योग्य माहौल में आने से हमारी मानसिकता में कितना परिवर्तन आता है। तो वर्तमान समय के अनुसार हम कह सकते हैं कि आज का व्यापारी जो है वो एक बीच राह की पहली बन गया है। एक तरफ उसका बिजनेस है जिसमें उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है एनर्जी लगानी पड़ती है तभी वो उसमें सफल हो पाता है और जब वो उसमें केंद्रित हो जाता है तो दूसरी ओर परिवार वाले नाराज होते हैं और कंप्लेन करते हैं कि आप तो घर में टाइम ही नहीं देते हैं और तीसरी तरफ वो खुद है खुद के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं ना खुद के स्वास्थ्य के लिए भी उसको फुर्सत नहीं है और जब स्वास्थ्य के लिए भी टाइम नहीं तो आत्म कल्याण की बात तो बहुत दूर हो जाती है कि वो अपने इनर डेवलपमेंट के लिए या खुद के एम्पावरमेंट के लिए भी कोई ऐसा जीवन में पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर उससे परिवर्तन लाना है तो उससे शुरुआत कहां से करनी चाहिए सेल्फ से है ना। बातें तो कार्यक्षेत्र में भी आती है परिवार में भी आती है और हमें दोनों को फेस करना होता है पर शुरुआत जो है वो तो हम खुद से करेंगे ना? क्योंकि अगर खुद हम ठीक हैं एम्पावर्ड हैं पॉजिटिव हैं हेल्दी हैं मेंटली तो हम परिवार और व्यापार दोनों में आने वाली बातों को अच्छी रीति से पार कर सकेंगे। तो यहां जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें हैं एक ट्रांजिशनल चेंज और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। जब कभी कोई बात आती है तो एक है ट्रांजिशनल चेंज थोड़े समय के लिए ऊपर ऊपर से हम बदल जाते हैं परिवर्तन कर लेते हैं कि ताकि अभी जो समस्या आई है वो ठंडी हो जाए शांत हो जाए तो टेम्पररी ऊपरी ऊपरी चेंज हम अपने आप में कर लेते हैं। मान लो आपके पास चार एम्प्लॉई हैं और कोई कारण से आपस में उनका झगड़ा चलता ही रहता है तो आप उसको डांटते हैं कि भई अब अगर आपका झगड़ा हुआ तो फिर मैं आपको नहीं रखूंगा तो वो टेम्पररी शांत हो जाते हैं। हम कहेंगे कि बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर लेवल पर अब वो झगड़ते नहीं, परंतु अभी भी उनकी एक दो के प्रति जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। तो एक लेवल है बिहेवियरल चेंज कि व्यवहार बदल दिया, अब हम झगड़ते नहीं, बोलते नहीं, गालियां नहीं देते, पर अभी भी हमारा एक दो के प्रति विचार नहीं बदलते। इसलिए हमारा व्यवहार अभी भी एक दो से उचित नहीं होता। तो ये है ऊपरी और बाह्य परिवर्तन। जैसे आप लॉन घास काट लेते हैं तो आपको लगता है कि मैदान बिल्कुल साफ हो गया, पर जब फिर बारिश आती है फिर से घास उग निकलती, क्योंकि कारण क्या है, हमने ऊपर ऊपर से लॉन काटी थी पर जड़ों से नहीं निकाला, जड़ों से खत्म नहीं किया। तो ट्रांजिशनल चेंज माना ऊपरी परिवर्तन, टेम्पररी परिवर्तन, और वो परिवर्तन बेस्ड ऑन द पास्ट, पूर्व में जो हमें जीवन में ऐसे अनुभव हुए उसके आधार पर हम अपने में थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट माना बाह्याचार में परिवर्तन करते, पर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज माना जड़ से परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, कॉन्शियसनेस लेवल से परिवर्तन करना है तो वो इफेक्टिव एंड परमानेंट चेंज होता है। इसलिए वो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जब हम समझते हैं कि भाई इस प्रकार झगड़ने से फायदा नहीं है, हमारी अपनी एनर्जी वेस्ट होती है और हमें ही आपस में रहकर काम करना है, तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है तो हमारे एक्शन में चेंज आता है और एक दो के प्रति हमारे मन भी ठीक रहते। और बेस्ड ऑन चेंजिंग इनर एनवायरनमेंट, एक दो के प्रति भावनाओं में भी परिवर्तन लाए। कई बार हम व्यवहार बदलते हैं, समझते भी हैं कि हमें नहीं झगड़ना है, पर उसके बाद भी एक दो के प्रति भावना शुभ नहीं रहती, ऊंची नहीं रहती, तो हमारी एक दो के प्रति जो फीलिंग्स है वो क्योर नहीं होती। पर आवश्यकता है कि हम अपनी फीलिंग्स को भी बदले, तो इससे हमारे जो भावनाएं हैं उसमें हम चेंज कर सकेंगे। और अति सूक्ष्म लेवल है कि कॉन्शियसनेस लेवल से चेंज करें, हम स्मृति से चेंज करें, और वही आध्यात्मिकता वहां काम आती है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें मूल सत्य समझाते हैं, और मूल सत्य जब समझ में आ जाते हैं तो हमारी एक दो के प्रति स्मृति, जो बताया ना शिवानी बहन ने कि आप अपने तरफ से कौन से विचार दो, कौन सी भावनाएं दो, तो वो चेंज हम ला सकते हैं। तो आवश्यकता है वर्तमान समय में आमूल परिवर्तन हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में, माना हमारी भावना, भाव, वृत्ति, स्मृति, विचार, वाइब्रेशन, इन सब में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज के एजुकेशन से सोफिस्टिकेशन आता है, शिष्टाचार करना हम सीख जाते हैं, पर हमारी अंदर की भावनाएं शुभ नहीं होती है ना। जैसे कई बार हम घर में समझो आज छुट्टी है, आराम से बैठे हैं, कुछ एंजॉय करने के मूड में हैं, और अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो हम मुख से क्या कहते हैं? हाँ, कि आइए आइए, हाँ मैं बहुत खुशी हुई आप पधारे, है ना? तो बाह्याचार तो हमने अच्छा कर लिया, पर मन में क्या आता है? कहाँ ये आ गए? हाँ, हमारा सारा मजा किरकिरा कर दी, तो भावना हमारी ठीक नहीं रहती। इस प्रकार बिजनेस में भी होता है, ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, है ना? ग्राहक को हम कहेंगे हाँ ये सब आपके लिए ही है, ये चीजें बहुत अच्छी है ना? पर अंदर हमारी भावना कई बार दूसरी होती है। तो ये जो हमारी ड्यूअल पर्सनालिटी है, इससे हमारी फीलिंग्स क्रश होती है और यही हमारे तनाव का कारण बनता है। इसलिए आंतरिक वातावरण को बदलना, माना भाव, भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, विचार, वाइब्रेशंस, इन सब में परिवर्तन लाने से ही हमें वास्तविक शांति और सुख की अनुभूति अपने कार्य में होती है। तो ये समय, अभी जिस समय के दौर से हम गुजर रहे हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं ये बातें। इट इज नॉट द टाइम टू ब्लेम, हमें दूसरों को ब्लेम करने का ये समय नहीं है, क्योंकि इससे ना बात बदलती है, ना परिस्थिति बदलती है, हमारे संबंध खराब होते हैं और हमारी अपनी एनर्जी भी वेस्ट होती है। अक्सर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम है, इसके कारण मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, यही मेरे मार्ग में पत्थर बन रहे हैं, विघ्न डाल रहे। तो हम व्यक्ति को, परिस्थिति को दोषित करते हैं कि लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ही ऐसी है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये हम दूसरों को दोषित करते हैं, परंतु इससे हमें ही आगे चलकर नुकसान होता है, क्योंकि कई बार हमारे सामने जो परिस्थिति, विघ्न, डिस्टर्बेंस आता है, उसका कारण हम खुद ही होते हैं, हमारे अपने स्वभाव संस्कार ही होते हैं, पर हम स्वयं को जानते नहीं, स्वदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम दूसरों को दूषित करते हैं कि किसने मेरी कंप्लेन की, कौन ये बात लेके आया। तो दूसरों के प्रति हम ब्लेम करते हैं, पर खुद के परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं करते। इट इज नॉट टाइम टू चेंज अदर्स, वो बदले, वो पहले सॉरी करे, फिर मैं मानूंगा, है ना? तो हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, परंतु इजी वे है खुद को बदलना, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, तब तक हमारे मन में वो गांठ बनी रहेगी, वो टेंशन बना रहेगा, और हमारा टोटल प्रयास यही होगा कि ये सुधरे, ये झुके, ये सॉरी करे, और नहीं करेगा तब तक हमारा मन वही बात सोचता रहेगा। इट इज नॉट इवन द टाइम टू एक्सपेक्ट अदर्स टू बी ग्रेटफुल। अब समय ऐसा आ चुका है, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि अब हम दूसरों से वो हमारा शुक्रिया माने, थैंक्स करे, वो आशा रखने का भी नहीं। आप अपने परिवार में अपने बच्चों से भी ये अनुभव करते होंगे, है ना? अगर हम कहते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे, तुमको पढ़ाने के लिए कितना हम खर्च करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात की, ये तो आपका फर्ज है ना, ऐसा जवाब दे देते हैं। तो आप समय अनुसार आत्माओं में से वैल्यूज कम हो रहे हैं और इसलिए हम उनसे ये भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि हमने आपके लिए इतना अच्छा किया तो आपको शुक्रिया करना चाहिए, वो भी हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इट इज नॉट द टाइम टू रिग्रेट और रिपेंट, पश्चाताप करने का, झल्लाने का ये समय नहीं है, है ना। कई बार हम अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, गुस्से होते रहते हैं या पश्चाताप करते रहते हैं, जो हो गया हो गया, सबक सीखें और आगे बढ़ना है। इट इज नॉट द टाइम टू वरी और फ्रेट अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के लिए चिंता करने की बात नहीं है। हमारा वर्तमान ठीक है, अंडरस्टूड, हमारा भविष्य ठीक होगा ही। उसके बारे में काफी बातें आपकी आज हुई है। इट इज नॉट द टाइम टू वेस्ट टाइम, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ ही हुआ, ये नहीं होता। तो इस प्रकार होने के बाद भी सोच सोच कर हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो भी टाइम वेस्ट करना नहीं है। अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा है, टू एम्पावर वन सेल्फ, हमें खुद को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। बातें तो और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना, कम नहीं हो रही है, पर और ही रूप बदल बदल कर और क्रिटिकल बातें हमारे सामने आ रही है। इसलिए बेस्ट वे है खुद को एम्पावर करें, जो अच्छा पॉजिटिवली हम कर सकते हैं कोई भी बात के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, कोई प्रॉब्लम सोल्व के लिए, वो हम करें, बाकी हम भगवान पर छोड़ दें। इट इज टाइम टू लेट गॉड टेक ओवर, है ना। जो हम अच्छा कर सकते हैं करें, बाकी हम कहते हैं ना, टाइम एंड गॉड आर टू ग्रेट हीलर्स। समय आने पर हर बात ठीक हो जाती है और भगवान पर छोड़ दो कि हमसे जो हो सका हमने किया, बाकी अब भगवान जाने और ये संसार का ड्रामा जाने। तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और धीरज, और मन शांत रहेगा तो सॉल्यूशन भी टच होगा और हम परिस्थिति को पार कर सकेंगे। तो हमें अपनी ही शक्तियों को, जो हमारे अपने अंदर है, उसको विकसित करने की जरूरत है। सॉल्यूशन हमारे पास है और हम नजर बाहर करते हैं कि कौन ठीक हो, कहाँ ठीक हो, तो बात मिटे, तो दूसरों के तरफ नजर नहीं, खुद को ही हमें ठीक करना है, अपने अंदर से ही सॉल्यूशन हमें निकालना है। हमारे अपने अंदर ही बहुत सारी योग्यता, शक्तियां और गुण समाये हुए हैं। आज के मॉर्निंग फर्स्ट लेसन में आपने समझा है कि हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है, शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, प्रेम आनंद स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनलिटी है, हमें उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। ओम शांति।
ओम शांति। हम गीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने परिवर्तन शक्ति पर प्रकाश डालकर हमको बहुत लाभान्वित किया। अभी हम करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद करेंगे। अभी आगे का सत्र है।